नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारत में बड़ी संख्या में कंपनियों का मानना है कि 5G के क्रियान्वयन से रोजगार की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा और इससे देश की प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए अपार संभावनाएं खुलेंगी। एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। टीम लीज सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार 80% से अधिक कंपनियों का मानना है कि 5G प्रौद्योगिकी से सूचना प्रौद्योगिकी और बैंकिंग तथा वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन और कौशल में वृद्धि को लेकर व्यापक संभावनाएं बनेंगी। देश का निर्यात मई के महीने में सालाना आधार पर 10.3% गिरकर 34.98 अरब डॉलर पर आ गया। बृहस्पतिवार को सरकार की ओर से जारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मई में देश का आयात भी 6.6% घटकर 57.1 अरब डॉलर पर आ गया, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये 61.13 अरब डॉलर था। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने आयात एवं निर्यात के आंकड़ों पर कहा कि वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर प्रतिकूल हालात अब भी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि वाणिज्य विभाग और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग निर्यात प्रोत्साहन की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें 40 देशों के साथ व्यापार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के प्रमुख अल्वारो लारियो से मुलाकात कर उभरते वैश्विक मुद्दों के अलावा आपसी हितों के मुद्दों पर भी चर्चा की। इस बैठक में सीतारमण ने इस बात पर बल दिया कि IFAD जैसे बहुपक्षीय संस्थानों को खाद्य भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे आकार की खेती को लाभकारी बनाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रभावी योगदान देना चाहिए। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने उभरती व्यवस्थाओं और विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर ध्यान देने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को खाद्य सुरक्षा, ऋण संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी नई वैश्विक चुनौतियों से निपटने का रास्ता निकालना चाहिए। IFAD संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है। विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वित्त मंत्री ने IFAD प्रमुख से मुलाकात के दौरान नई एवं उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों की निष्पक्ष समीक्षा की जरूरत पर भी जोर दिया। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में इस मुलाकात का ब्यौरा देते हुए कहा कि IFAD प्रमुख ने G20 समूह की अध्यक्षता कर रहे भारत के प्रयासों की सराहना की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि अफ्रीका में व्यापार और निवेश बढ़ाने की भारी संभावनाएं हैं और भारतीय कंपनियां वहां अवसर तलाश रही हैं। उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों के उद्यमियों को द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक निर्धारित लक्ष्य 200 अरब डॉलर से पार ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। दोनों क्षेत्रों के बीच द्विपक्षीय व्यापार फिलहाल लगभग 100 अरब डॉलर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अफ्रीका के साथ मुक्त व्यापार समझौता के लिए भी वार्ता कर सकता है। CII एक्जिम बैंक के भारत अफ्रीका वृद्धि साझेदारी पर सम्मेलन में गोयल ने कहा, भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में कई अवसर तलाश रही हैं और वे अफ्रीका में आर्थिक वृद्धि को गति देने और नौकरियां पैदा करने में मदद कर सकती हैं। गोयल ने कहा कि व्यापार बढ़ाने के मामले में हम अभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हम अफ्रीका के मित्र एवं भाई के तौर पर काम करते हैं। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में चल रही है। बृहस्पतिवार को जारी नए आंकड़ों में ये जानकारी मिली। माना जा रहा है कि ऊंची ब्याज दरों की वजह से न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था की ये स्थिति बनी है। आंकड़ों के अनुसार मार्च तिमाही में न्यूजीलैंड के GDP में 0.1% की गिरावट आई। इससे पिछली तिमाही में GDP में 0.7% की गिरावट आई थी। लगातार दो तिमाहियों में GDP में गिरावट को मंदी के रूप में परिभाषित किया जाता है। न्यूजीलैंड के केंद्रीय बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दर को लगातार 12वीं बार बढ़ाकर 5.5% कर दिया। इसके चलते अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ी है। 2008 के बाद ये ब्याज दर का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे लोगों के घर, कार या कोई अन्य चीज खरीदना महंगा हो गया। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने संकेत दिया कि उसका ब्याज दर में और वृद्धि का इरादा नहीं है। टाटा स्टील ने कम कार्बन उत्सर्जन की इस्पात विनिर्माण प्रक्रिया के विकास के लिए जर्मनी के SMS समूह के साथ भागीदारी की। टाटा स्टील ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि इस MOU के तहत दोनों कंपनियां आगे तकनीकी चर्चा करेंगी और SMS समूह द्वारा विकसित इजी मेल्ट प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप से औद्योगिक प्रदर्शन करेंगी। बयान में कहा गया कि ये प्रदर्शन टाटा स्टील के जमशेदपुर संयंत्र के ई ब्लास्ट फर्नेंस में किया जाएगा। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में 50% से अधिक की कमी लाना है। भारत ने पिछले एक दशक में स्वास्थ्य पर्यटन से 740 करोड़ डॉलर की आय अर्जित की और अगले 10 साल में ये आंकड़ा बढ़कर 4,350 करोड़ डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद है, अधिकारियों ने जानकारी दी। अधिकारियों ने इंडियन चैम्बर बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित बिम्स्टेक हेल्थ फोरम में बुधवार को कहा कि पिछले 5 साल में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई निजी निवेश हुए हैं। प्रतिनिधियों ने बैठक में समग्र स्वास्थ्य के तहत मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाना, टेलीमेडिसिन, सूचना साझा करना, मानव पूंजी के आदान प्रदान पर भी चर्चा की। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।